ओम शांति। हमारे मध्य में आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुदेश दीदी जी विराजमान है। हम एक हाथ की ताली से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुदेश दीदी जी हमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वर्तमान समय संयुक्त मुख्य प्रशासिका हैं और आप ज्ञान सरोवर बेटर वर्ल्ड एकेडमी की सीनियर निदेशिका हैं और यूरोप स्थित सेवा केंद्रों की भी आप निदेशिका हैं। आपका लौकिक जन्म 1942 में हुआ। बचपन से ही आपको समाज सेवा के कार्यों में बहुत रुचि थी। आपने भारत देश के समस्त धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में स्नातक की डिग्री हासिल की। उसी दौरान मात्र 16 वर्ष की अल्पायु में थोड़े समय के लिए गर्ल्स स्कूल में प्रधानाध्यापिका के रूप में अध्यापन कार्य भी किया, अर्थात होनहार वीरवान के हो चीखने पात। आपने सन 1957 में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संपर्क में आई और आपने महसूस किया कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मानवता की आध्यात्मिक सेवा करना ही सच्ची सेवा है। आप एक प्रतिभाशाली वक्ता हैं जिसके फलस्वरूप आपने पूरे विश्व भर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेकर संस्थान का गौरव बढ़ाया है। आपने 100 से भी अधिक देशों में प्यारे बाबा का आध्यात्म के गूढ़ विषयों पर व्याख्यान देकर दैनिक जीवन में उसकी उपयोगिता को प्रतिपादित किया है। आप मोरिगन रिट्रीट सेंटर की निदेशिका हैं। 1974 में भारत के बाहर विदेश में ब्रह्मा कुमारी संस्थान का पहला सेवा केंद्र लंदन में खोलने का श्रेय आपको है। राजयोग मेडिटेशन और मस्तिष्क की रचनात्मक योग्यताओं के संबंध में अनगिनत प्रतिभाशाली व्याख्यान आप दे चुकी हैं। विशेषकर मस्तिष्क की आंतरिक कार्य प्रणाली को रुचिकर ढंग से स्पष्ट करने का आप पारंगत हैं। आदरणीय सुदेश दीदी के प्रवचन नियमित रूप से प्रसारण पीस ऑफ माइंड चैनल, सकारात्मक सोच, तनाव मुक्त जीवन शैली, जीवन मूल्य, आंतरिक शक्ति की खोज जैसे विषयों पर अपने प्रभावशाली ओजस्वी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय दीदी विख्यात हैं। मैं दीदी के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। जर्रा जर्रा आपके त्याग की गवाही है, इसलिए ही आप यहाँ आई हैं। यूं ही नहीं दीदी, आप आशा की किरण कहलाती। आप तो इस धरा पर परमात्मा की परछाई हैं। आदरणीय दीदी से निवेदन है कि हमें भट्टी का लक्ष्य और डबल लाइट स्थिति पर अपने गुह्य सूक्ष्म विचारों को प्रदान करें। आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम आनंद, ओम आनंद, परमानंद, शांति। हमारा ड्रामा अनुसार आपको आधा घंटा तपस्या करने का चांस मिला। हमको ये प्रोग्राम आज का कि यहाँ क्लास है, एक थोड़ा समाचार तो मिला था परंतु याद नहीं था कि आज है वो। ये तो था कि यहाँ क्लास है और आज वहाँ पर 300 सेवाधारी हैं ज्ञान सरोवर में, तो उनका क्लास विशेष रखा था क्वेश्चन आंसर सेशन का। तो उसमें ही तो अभी जब 10 मिनट पहले ही समाचार आया कि आपका क्लास तो वहाँ वो इंतजार कर रहे हैं पांडा भवन, मैंने कहा पांडव भवन में आज क्लास है क्या? कहाँ, अभी इंतजार कर रहे हैं। तो टॉपिक क्या है? भक्ति का लक्ष्य डबल लाइट स्थिति। अच्छा, बहुत अच्छा। भट्टी, आपको लक्ष्य तो पता ही है, पर फिर से दोहराया जाता है। भट्टी में कौन सी भट्टी में आए हैं डिपेंड करता है कि कौन सी भट्टी में बैठे हैं। तीन दिन में, चार दिन में, जो भी यहां पर हो, तो हर दिन अलग अलग भट्टी में बैठो, या चारों ही दिन अमृत वेले दोपहर शाम चलते फिरते रात्रि योग करने से पहले देखो कि मैं उस भट्टी में हूं। भट्टी माना सब प्रकार से पैक करके बंद होके बैठना, इसलिए नाम भट्टी है। मिसाल के तौर पर धोबी की भट्टी, अब धोबी की भट्टी में कपड़े धुलाई होते हैं। आपके घर में आप मशीन में कपड़े धुलाई करते हैं, या आप पुराने जमाने वाला सिस्टम पंजाब का बैकनस्तर उबाल दिया साबुन के पानी के साथ, कपड़े डाल के ढक दिए, थोड़ी देर अच्छा उसकी मैल गल जावे, तो आपने उसमें थोड़ा वक्त रहने दिए, ऐसे नहीं कि डाल के निकाल लिया। भट्टी तो ऐसे जैसे घर में मशीन में आपने भट्टी में कपड़े, मशीन में कपड़े धोए, आप धोबी हो गए ना, पर आपने मशीन बंद करके धोया, खोल के धोएंगे चलेगी मशीन, कपड़े धुलाई होंगे, तो बाबा भी आके पहले धोबी की भट्टी खोलते हैं। कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हारी इधर उधर की जो तुम्हारे अंदर धूल चढ़ी हुई है और भूल हो गई है और मूल स्वरूप भूल गया है, जीवन में अनेक प्रकार के कर्मों के धब्बे पड़ गए हैं, कर्म संस्कारों के, मैं धुलाई करने आया हूं। स्वच्छ बनाने आया हूं। तो पहले अभी खाली पानी में तो नहीं धुलाई होगा ना कपड़ा, उसके लिए तो ज्ञान साबुन चाहिए। पैक करने के लिए सब तरफ से दे तथा दे के संबंध से डिटैच होने के लिए, न्यारा होने के लिए, अंतर्मुखी बनने के लिए, इसीलिए ताकि घर में रहते बाहर बहुत सारी जिम्मेवारी, परिस्थिति, काम काज, अभियान से अंतर पड़ा, काम तो वो अभी होना ही है, करना ही है, पर अभी तो मेरा वो काम प्रैक्टिकल में नहीं, तो सोचूं नहीं, इसलिए स्विच ऑफ करके बैठे, संकल्प को स्टॉप करके बैठे। तो शुरू में बाबा कहते थे, देखो अगर आत्मा को स्वच्छ बनाना है, जैसे कपड़े को स्वच्छ बनाना होता है, तो खाली पानी से तो साफ नहीं होगा ना, सोप चाहिए। तो तीन तरह का सोप उस समय मिलता था। कपड़े धोने का तो होता ही था, परंतु नहाने का भी तीन तरह का सोप होता था। एक सोप का नाम था लक्ष सोप। तो आपकी भट्टी का लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण बनने का लक्ष्य कौन सा है? ब्राह्मण पहले ज्ञान में आए तो पहला लक्ष्य जो नियम मर्यादाएं हैं उसका पालन करने का होता है। खान पान शुद्ध हो, मन के संकल्प शुद्ध हो। हमारे जीवन में स्वच्छता आवे तो हमारा सवेरे स्नान, दिन में कोई स्थिति में स्नान करना दबान जाना पड़े तो स्नान, कुछ स्वच्छ बनने की विधि बाबा ने नियम बना के सिखाई। और लक्ष्य बहुत ऊंचा दिया कि तुम्हारा लक्ष्य है श्री लक्ष्मी नारायण बनने का। एकदम सुंदर चोला, निरोगी कंचन काया, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी जीवन। तो पहला लक्ष्य तो हमारे पास ये ज्ञान सोप जो है उसको मैं बराबर डाला है अपने कॉन्शियस में। साबुन डाला ही नहीं अगर तो कपड़ा तो धुले, मैल तो नहीं उतरेगी ना बदन की भी कपड़े की भी। अच्छा धुलाई हो गया परंतु आपने बरसात का मौसम है, आपने अंदर सुखा दिया, कपड़ा चमकेगा, धुलाई करने पर भी पीला दिखाई पड़ेगा। इसीलिए अब आत्मा को दूसरा सोप चाहिए। धूप में सुखाना है तो कौन सी धूप? सनलाइट सोप चाहिए। बाबा ज्ञान सूर्य है, वो ज्ञान इतना स्पष्ट आत्मा को देखने का, मैं आत्मा हूं मेरी दृष्टि में जैसे सूरज चढ़ता है तो चीज स्पष्ट दिखाई देती है। आंखें तो वो ही है पर अंधेरे में स्पष्ट नहीं दिखाई देता। दर्पण है, नेत्र नहीं है, चेहरा नहीं दिखाई देता। दर्पण है, धूल चढ़ी हुई है, चेहरा दिखाई पड़ेगा। तो लाइट चाहिए तो दूसरा सोप है सनलाइट। बाबा जो है वो ज्ञान सूर्य है। ज्ञान सूर्य के ज्ञान और योग से जो शक्ति हमारे को मिलती है आत्मा में चमक आ जाती है, खुशी आ जाती है, रौनक आ जाती है। जैसे कपड़ा फ्रेश होए तो लगता है, खुद को भी मैला कपड़ा पहना हो तो कैसा लगता है, स्नान करके फर्स्ट फर्स्ट कपड़ा पहनो, हाँ तैयार होते। तो ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि में फ्रेश ज्ञान, रोज ज्ञान सूर्य बाबा से बुद्धि खुलती है, लाइट मिलती है। नॉलेज इज लाइट। से योग लगाते हैं तो माइट मिलती है। इसीलिए इकट्ठा संगठन, एक एक कपड़ा धोते हैं तो भट्टी नहीं कहलाती, इकट्ठे धोते हैं तो भट्टी कहलाती। कपड़े आप इकट्ठे कर लेते हो तो मशीन में डालते हो। तो ऐसे बाबा भी कहता है, तुम भट्टियां करते हो, संगठन का बल रहता है, तो लक्ष्य सामने रखो स्वच्छ बनने का, शुद्ध बनने का, रूहानी चेहरे पर चमक आवे, दृष्टि में लाइट, बुद्धि की दृष्टि में लाइट आए, परखने की शक्ति, माया को भी अच्छी तरह से परख सको, ताकि तुम्हारे जीवन से दूसरे का जीवन बने। तो तीसरा सोप है लाइफ बॉय। सच्चा है, अभी भी मिलता है तो बाबा भी कहते हैं, हे बच्चे, हे बॉय, लाइफ बना। ऐसे लाइफ गवाह नहीं, ब्राह्मण जीवन मिला है, ये नवी लाइफ मिली है, और अभी समय है लाइफ गंवाने का, समय को सफल करने का, बिताने का नहीं। ऐसे ही उस समय ऐसे अपना एक एक पल, एक एक सेकंड लाइफ का मूल्यवान है। इसीलिए संकल्प, वृत्ति, दृष्टि, विचार, व्यवहार, संस्कार को शुद्ध बनाना है, स्वच्छ बनाना है। उसके लिए जरूरी है, दूसरी भट्टी फिर मैं खोलता हूं, रंगरेज की। पहली भट्टी धोबी की भट्टी, दूसरी भट्टी तुम इकट्ठे आपस के संगठन में आते हो, मैं अपन रूहानी संग मिलता है, रंगरेज कपड़ा रंगता है, अगर धब्बा लगा हुआ है तो धब्बा नहीं उतरा, तो रंग लगने के बाद भी कपड़ा सुंदर नहीं दिखाई पड़ेगा। संग का रंग बाबा के साथ संग रख है, संबंध जोड़ना है, तो वो जो दाग लगे हुए ना अनेक जन्मों के, खाली इस जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के जो दाग लगे हैं उसको भी उतारना है। अगर दाग लगे हुए हैं, पुराने संस्कार अभी भी स्ट्रांग है, तो बेशक रंग में तो आयो संग, भट्टी तो कर ले, पर ध्यान रखना कि धब्बे सारे निकल जावे, इतना स्वच्छ रहे, दृष्टि में, वृत्ति में, विचार में, व्यवहार में, संस्कार में। परिवार में रहते हुए हमारी वृत्ति, आत्मिक वृत्ति, ट्रस्टी की वृत्ति, गृहस्थी वाली नहीं, तो ये समय मिलता है अपने आप को, जो पहले कोई ना कोई किसी के संस्कार का प्रभाव, किसी के साथ हिसाब किताब का दाग, किसी के साथ पता नहीं किस प्रकार की किसी की नेचर, अपमान करने की, गुस्सा कर करके बदनाम करने की, कोई ना कोई गलानी करके, हमारे जीवन में जो बहुत प्रकार के हमारे कर्मों के दाग हैं, या दूसरों ने जो दाग लगाए, वो साफ रहे, उनसे न्यारे हो जाए। इसको कहते हैं लेप छेप से न्यारे होना। आत्मा लेप छेप से न्यारी, बाबा कहते हैं, नहीं होती, पर आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो ये जो लेप अथवा प्रभाव पड़ा, खेप कमी आई, दाग लग गया, उसको बाबा दूर करता है, रंग ऐसा रंगता है। पर अगर स्वच्छ होएगा तो चमकेगा, अगर दाग को नहीं उतारा तो संग का रंग तो लग गया, पर डब्बा संस्कार नहीं बदला। तो ऐसा ना हो जो अपने कोई संस्कार है उसको भस्म करके ही जाना है, पक्का हो। वो अपना बाबा के कमरे में बैठे, बाबा की कुटिया में बैठे, बाबा के साथ शांति स्तंभ पर बैठे, तो नोट करें कौन सा मेरा संस्कार ऐसा है जिसको मुझे स्वाह करके ही जाना है, दाग मिटा के ही जाना है। भट्टी का लक्ष्य है बेदागी हीरा बनने का। चमक आ जावे, जीवन की वैल्यू का महत्व तो पता चले। ब्राह्मण कोई ऑर्डिनरी लाइफ नहीं है, चलते चलते थोड़े लापरवाह बन जाते हैं, दुनिया के प्रभाव में आके थोड़े सुस्त बन जाते हैं, नियम मर्यादा पर कोई नाराज ना हो जावे, थोड़ा इजी नेचर बन जाते हैं। फिर सब कहते हैं अरे कल तो मैंने देखा तुमने पार्टी में भाग लिया और थोड़ा ऐसे कर, नहीं वो तो मैंने बहाना बनाया था, वो मेरा दोस्त था, उसके दोस्त के घर में उसके बच्चे की शादी और मेरा बॉस भी वो है। नाराज ना हो जावे इसलिए गिलास उठा के सिर्फ ऐसे किया, सिप पिया नहीं। अब वो फोटो तो खिंच गई, थोड़ा भी समझो दूसरा कहेगा इनके घर में आपने लिया, मेरे पास क्यों नहीं लिया। अगर मेरे नियम का पता है तो पता है भाई इन्होंने व्रत रखा हुआ है, ये पक्के हैं। लोक लाज कुल की मर्यादा, तो पहला मन तथा कर्म इंद्रियों पर और संस्कारों पर जीत, दूसरा लोक लाज कुल की मर्यादा का से ऊपर ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन को पक्का करना। तो ये लक्ष्य में मैं फिर जरूर मेरे अंदर जो ईश्वरीय नियम है, मर्यादाएं हैं, उनका सिस्टेमेटिकली पालन करना, पक्का बनना उसमें। तो दाग हीरे तुल्य जीवन बना रहा हूं तो बेदागी हीरा बनूं, जो बाबा के गले का हार बन जाऊं, माया से हार न खाऊं, जो द्वापर में जाकर के मंदिर में तो बैठा हूं, मंदिर के बाहर बैठा हूं, हार पे रो रहा हूं, मैं बेच रहा हूं हार, तुम जाकर के पहना देना, मेरा पिरोया हुआ हार वो जाकर के मेरी मूर्ति पर चढ़ावे। हार पिरोने वाला नहीं, हार खाने वाला नहीं, हीरा बन के बाबे का गले का हार बन जाना है। न मन साब से हार, न व्यवहार और वाणी से हार, न किसी भी जो मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है, लक्ष्य पक्का रखा है, उसमें कोई टेस्ट आवे तो हिम्मत हार देवे। हिम्मत भी नहीं हारनी है, मैंने अपना जीवन बाबा पर बलिहार किया है और उसके गले का हार बना हूं, इसलिए किसी भी बात में मुझे हार नहीं खानी है, पास विद ऑनर होना है। लक्ष्य है पास विद ऑनर होना, और दाग मिटाने हैं तो पास्ट, इस पास्ट का जो सबक मिला है उस भूत को वापस नहीं लाना है। कोई परीक्षा, कोई परिस्थिति आई, कोई हिसाब किताब था, कोई कर्मों का लेन देन था, कोई मेरी अपनी कमजोरी थी, कोई मेरी लापरवाही थी, दाग लग गया था। तो अब बेदागी हीरा बनना है मुझे, अपनी वैल्यू बढ़ानी है। हो गया अभी वो वापस, टाइम नहीं आएगा, पर दाग जरूर मिट जाएगा। मैला जब हुआ तो मैला धीरे धीरे करके हुआ है, हिम्मत रखनी है, कोई प्रतिज्ञा करके दृढ़ संकल्प से कर्म करते हैं तो वो मिटता जल्दी है। देखो कपड़ा मैला होने में सारा दिन पहनो ना, कहीं बाहर जाओ मैला हो जाएगा। कपड़ा मैला हुआ, धुलाई होने में कितना टाइम लगता है? पूरा दिन लगाएंगे क्या? 10 मिनट में कपड़ा साफ हो जाएगा। तो परमात्म योग शक्ति जो लक्ष्य रखा, सनलाइट, बाबा की लाइट योग शक्ति को बढ़ाया, ज्ञान का लक्ष्य रखा, शिव लक्ष्मी नारायण बनना है। सन के बाबा की शक्ति ज्ञान सूर्य से शक्ति लेकर के शीतलता अपने में भर रहा हूं, और साथ साथ दृष्टि को दिव्य बना रहा हूं, जो हर चीज को जैसे दिन में स्पष्ट दिखाई पड़ती है, स्पष्ट रीति से साक्षी बाबा को, सूत ज्ञान सूर्य को साथी बना के साक्षी होकर के देखा तो गहराई की कमी नजर आएगी, अच्छी तरह से नजर आएगी। अगर साक्षी होके नहीं देखा, लापरवाही से नजर आएगी तो सही, पता तो चलेगा, ठीक है, ठीक हो जाएगी। पर दूसरे की गैर जाए जब साक्षी होके देखते हैं तो छोटी भी भूल याद रहती है, इसमें ये कमी है, कोई भी कमजोरी फौरन बड़ी दिखाई देती है। पर ऐसे बाबा को साथी बनाया तो अपनी छोटी सी दाग भी बड़ा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान सूर्य ने गहराई बताई है कि छोटी कमजोरी भी इतनी फोर्स वाली है, भले मटका दूध का हो पर एक बूंद जहर की भरे हुए मटके को जहर बना देती है। तो एक कमजोरी लापरवाही की, केयरलेसनेस की, पर चिंतन की, व्यर्थ चिंतन की, दोष दर्शन की, सारी दृष्टि को एकदम देह अभिमानी बना देती है, ईर्ष्या वाली बना देती है, नफरत पैदा कर देती है, कंपैरिजन करने का वाला बना देती है, यानी कितनी सारी कमजोरियां साथ आ जाती है, आत्मा को कमजोर बना देती है। और योग माना शक्तिशाली बनना है, योग शक्ति कहा जाता है, कमजोरी कमजोरी है, बेचारा बीमार है, कमजोर हो गया, ये बीमारियां अवगुण बीमारियां हैं, कमजोर कर देती है, लापरवाही भी एक बीमारी है, कमजोर कर देती है। वो जो अंदर दृढ़ता हो, निश्चय हो, नशा हो, हिम्मत पूरी हो, उत्साह उमंग हो, ये सुस्त दस मिनट और कराती हूँ, फिर शायद खत्म करने का, फिर बाद में गीत सुनाएंगे या पहले सुनाने है? अभी सुनाने है क्या? आपका वेलकम बीच में कर लेते हैं। जब तक ये आवे स्टेज पर, तो जो कैंसर की बीमारी होती है, एक पता चला कि दाग है, कहेंगे क्या कोई बात नहीं, तो छोटी सी है, इलाज फौरन कराएंगे ना। तो कमजोरी कोई कम किसी गुण की थोड़ी भी है, वो कैंसर की बीमारी है, इसीलिए बढ़ने नहीं देनी है। फिर कुम्हार की दो भट्टी, धोबी की भट्टी, फिर उसके बाद रंगरेज की भट्टी, राइट, कुम्हार की भट्टी। अच्छा, नहीं नहीं आप पूरा करूँ तो नहीं, जो दस मिनट में पूरा करूंगी, आप ये सुना लो। अच्छा, शशि जी आ जाएगा, कच्चा बर्तन होगा ना तो उस पर जल्दी दाग लग जाता है मिट्टी का, पक गया ना दाग नहीं लगेगा, पॉलिश हो गया, कप बन गया तो उस पर चिपकेगा नहीं, तो बाहर का प्रभाव चिपकेगा नहीं, आप पर चमक जाएंगे। और फिर है फाइनल भट्टी, है सुनार की भट्टी, कुम्हार माना पक्का करना, एक एक ईंट जग की रक्षक है, मजबूत बन के रहने हम यज्ञ रक्षक। और सुनार की भट्टी है कि पुराना देवर जला दो, वो गला दो, और नया सुंदर देवर बन जाएगा। तो अगर खोट निकालनी है तो इसीलिए योग भट्टी में अपना है, तो पुराना गल जावे और नया देवर बन के जाओ, नमा नमूने के साथ सब गहना बन के जाओ, फिर गहना पहने रहना, आप ही बनना गहना, आप ही पहनना, दूसरा आपको देख के अरे नवा फैशन आया है, मैं भी ऐसा बनवाऊं, वो भी फिर ऐसे आएंगे भट्टी करने पांडव भवन में। ओके, ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय दीदी का हम एक हाथ की ताली से पुनः धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें तीन लक्ष्य सौंप दिए। पहला लक्ष्य दिया, दूसरा ज्ञान सूर्य का सौंप दिया, धूप लगाने का, और तीसरा लाइफ बॉय का सौंप दिया। और तीन प्रकार की भट्टी भी बताई आपने। पहली भट्टी आपने कपड़ों की धुलाई की भट्टी सामूहिक धोने की बताई, तो दूसरी रंगरेज की बताई, और तीसरी दीदी ने हमें बताई कुम्हार की भट्टी, जो कच्ची मिट्टी को, कच्ची ईंट को, कच्चे मटके को शीतल जल में बदल देती है। तो ऐसे ही ये मधुबन की भट्टी हमारे रोम रोम को सुनार की भट्टी। तो इस प्रकार से हम आदरणीय दीदी से वायदा करते हैं कि हम इस भट्टी को पूरा बेदाग हीरा, सच्चा हीरा बन करके जाएंगे, ऐसा हम दीदी को आश्वासन देते हैं कि दीदी आपकी क्लास का हम बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं बेदाग हीरा बनने के लिए। अभी मैं आमंत्रित कर रही हूँ मधुरवाणी ग्रुप को, जो हमारे स्वागत गीत को लेकर उपस्थित हैं। मधुरवाणी ग्रुप, सतीश भाई, हल्दर भाई और साथ में हमारे
निरंजन भाई,
हीरेंद्र भाई, तीनों भाई को हम स्वागत करते हैं कि वो अपना मधुरवाणी ग्रुप से हमारा स्वागत करें।
ओम शांति। मधुबन योग भट्टी में आना, ये मौसम बड़ा सुहाना, मम्मा बाबा की बातें, हाँ मम्मा बाबा की बातें मीठी दीदियों से सुनना। तप भूमि में तप करके हम तपस्वी है बन जाना, ऐसे दीदियों का पालना मिलती रहे हमें।
सही बात कही मधुबन महातीर्थ, जो भी आता है उसको ये अनुभव होता है कि आज भी बाबा दादी मम्मा सबका जो त्याग तपस्या जो यहाँ पर एक एक जर्रे जर्रे में जो उनका पावर भरा जो शक्ति मिली वो आज भी लगता है हमारे साथ में है। जो मधुबन में महातीर्थ पर आना सचमुच बड़ा भाग्य है। और जब दीदी जी को सुनते हैं तो भले दादियां हमारे साकार में हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन दीदी को देखते हैं तो लगता है दादियां सब हमारे साथ में हैं, पल पल साथ में हैं। और जब दीदी कहती है ओम शांति, ओम प्रेम, ओम खुशी, तो दादियां सारी इकट्ठी हो जाती हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के दीदी का हम अभिनंदन करते हैं। दीदी हमारे साथ में
महातीर्थ पर आना कितना भाग्यवान लुधियाना, मधुबन महातीर्थ पर आना कितना भाग्यवान लुधियाना, मधुबन महातीर्थ पर आना कितना भाग्यवान लुधियाना। तपो भूमि में तप करके हम तपस्वी है बन जाना, खाना है बाबा से हमको सब कुछ है पा जाना। मधुबन महातीर्थ पर, मधुबन महातीर्थ पर आना कितना भाग्यवान लुधियाना, मधुबन महातीर्थ पर आना कितना भाग्यवान लुधियाना। मधुबन का जर्रा जर्रा बाबा की याद दिलाता, मधुबन आने से ही सबका सहज योग लग जाता। मधुबन का जर्रा जर्रा बाबा की याद दिलाता, मधुबन आने से ही सबका सहज योग लग जाता। मुश्किल में मौका मिला इसको सफल बनाना, मधुबन महातीर्थ पर, मधुबन महातीर्थ पर आना कितना भाग्यवान लुधियाना, मधुबन महातीर्थ पर आना कितना भाग्यवान लुधियाना। मन का और मोबाइल का मौन रखना, अंतर्मुखता की गुफा में महातपस्या करना। मुख का मन का और मोबाइल का मौन रखना, अंतर्मुखता की गुफा में महातपस्या करना। करे तपस्या मिटे समस्या बाबा सा बन जाना, मधुबन महातीर्थ पर, मधुबन महातीर्थ पर आना कितना भाग्यवान लुधियाना, मधुबन महातीर्थ पर आना कितना भाग्यवान लुधियाना।
और इन चार दिनों में 14 वर्ष की भर्ती करनी है आपको।
यादगार बन जाए भर्ती इतनी शक्ति भरनी, 14 वर्ष वाली भर्ती इन चार दिनों में करनी। यादगार बन जाए भर्ती इतनी शक्ति भरनी, 14 वर्ष वाली भर्ती इन चार दिनों में करनी। धन्यवाद है दीदियों का लुटा रही है खजाना मधुबन महातीर्थ पर, मधुबन महातीर्थ पर आना इतना भाग्यवान लुधियाना, मधुबन महातीर्थ पर आना इतना भाग्यवान लुधियाना। तपो भूमि में तप करके हम तपस्वी है बन जाना, खाना है बाबा से हमको सब कुछ है पा जाना, मधुबन महातीर्थ पर आना इतना भाग्यवान लुधियाना, मधुबन महातीर्थ पर आना इतना भाग्यवान लुधियाना।
ड्रामा हृदय के स्नेह को कैसे भी करके पूरा करता है। वैसे क्योंकि वहाँ क्लास था तो लेट हुआ, परंतु फिर भी आपको पूरा ही मिला। मेरे को था 1-10 मिनट और कोई और गहरी बात बताऊं दृष्टि देते। अच्छा देखो, क्योंकि मुझे कल फिर विदेश जाना है, 12 बजे जाऊंगी, फिर भी मैंने कहा किसको मिलना हो तो भले 10 बजे ले आना, आप लोगों से वहाँ मिल लूंगी, ये मैंने बोला इनको। अभी भी कोई आना चाहे तो आ सकते हैं ज्ञान सरोवर में, कोई बात नहीं, वेलकम। तो बाबा ने और ड्रामा ने ये मन का संकल्प कैसे पूरा किया। मैं बाबा की कुटिया में बैठी थी और बाबा ने वापस भेजा कि जाओ टोली देखिए। ड्रामा ने निमित्त बना दिया कोई भी कारण से।